अध्याय दो व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र। व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि जीवन के वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। इन विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य मनोविज्ञान द्वारा अर्जित ज्ञान का प्रयोग किया होता है। मनोविज्ञान का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में हो रहा है। पहला, उद्योग एवं व्यवसाय। व्यवहारिक मनोविज्ञान का यह एक प्रमुख क्षेत्र है। इसमें लगे हुए मनोवैज्ञानिकों का संबंध उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों का चयन, वर्गीकरण, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कर्मचारी संबंध तथा प्रबंधकों की समस्याओं आदि से है। यद्यपि कि इस क्षेत्र के भी कई उपक्षेत्र हैं, लेकिन अधिकतर मनोवैज्ञानिक इन उपक्षेत्रों में अदल बदल कर सहयोग करते रहते हैं। उद्योग मनोविज्ञान का एक प्रमुख उपक्षेत्र अभियांत्रिकी मनोविज्ञान है, जिसमें कार्य और थकान, कार्यविधि में सुधार, कार्य वातावरण में परिवर्तन, कार्य की डिजाइन तथा कार्यक्षेत्र में सुधार संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अभियांत्रिकी मनोविज्ञान 1970 के दशक में आगे बढ़कर अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे मकानों की बनावट, शहरों में विकास की योजनाओं आदि में भी सक्रिय योगदान प्रदान कर रहे हैं। उपभोक्ता मनोविज्ञान की शुरुआत इस शताब्दी के आरंभ से ही मानी जाती है। इस क्षेत्र की शुरुआत विज्ञापन से होती है। डॉक्टर स्कॉट ने अपने भाषणों द्वारा यह बताने का प्रयास किया था कि विज्ञापन के क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग किस प्रकार हो सकता है। आजकल उपभोक्ता मनोविज्ञान के जिस क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहे हैं, उनमें प्रमुख है उपभोक्ता की विशेषताएं, आवश्यकताएं एवं पसंदगी। वे अनुसंधान एक और इस बात का प्रयास करते हैं कि वस्तुओं के मूल्य कम से कम हों, और दूसरी ओर उनकी डिजाइन ऐसी हो जिससे उपभोक्ता आकर्षित हो सके। उपभोक्ता मनोविज्ञान का संबंध अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और संचार माध्यम के अध्ययनों से भी है। इस क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों के शिक्षण तथा विकास संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बच्चों के असमानता पाई जाती है, जैसे सभी बच्चों की बुद्धि के स्तर में अंतर पाया जाता है। वे बच्चे जिनकी बुद्धि का स्तर बहुत निम्न होता है या अन्य बच्चों के साथ पढ़कर लाभान्वित नहीं हो सकते, इस प्रकार के वे बच्चे जिनकी बुद्धि का स्तर बहुत अधिक ऊंचा होता है, वे पढ़ाई ना करके शरारतपूर्ण कार्यों में लग सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई में उन्हें बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्कूल का मुख्य कार्य बच्चों को शिक्षित करना है। शैक्षणिक प्रगति बहुत सी बातों पर निर्भर करती है, जैसे शिक्षण विधि, प्रेरणा, परिपक्वता, स्कूल का वातावरण इत्यादि। शुरू में बच्चों की प्रगति को शिक्षक द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधि प्रभावित करती है, लेकिन आगे चलकर विद्यार्थी स्वयं अपनी प्रगति के लिए जिम्मेदार होता है। वह जितना परिश्रम करता है, याद करने की कौन सी विधि अपनाता है इत्यादि बातों से उसकी प्रगति प्रभावित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक निर्देशन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अलग अलग विषयों के अध्ययन के लिए अलग अलग अभिरुचियों की आवश्यकता होती है। यह भी जानना आवश्यक है कि बच्चों का झुकाव किन विषयों के अध्ययन की ओर है। कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि क्या वे कक्षा 9 में कौन से विषयों का चयन करें। ज़्यादातर अभिभावक तो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा विज्ञान विषय लेकर ही आगे की पढ़ाई करे। उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनके बच्चों को विज्ञान में पढ़ने में रुचि है या नहीं। जब बच्चों के विषय का चयन इनकी रुचि, योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं को ध्यान में रखकर नहीं किया जाएगा, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना रहेगी कि बच्चे सुचारू रूप से अपना अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के पश्चात बच्चों की योग्यताओं का समुचित परीक्षण किया जाए या उनकी रुचियों का पता लगाया जाए तथा कक्षा 8 की परीक्षा में मिले शैक्षणिक उपलब्धियों को देखा जाए। इसके पश्चात ही यह निर्णय करना चाहिए कि वे भविष्य में किन विषयों का अध्ययन करें। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत व्यवहारिक मनोविज्ञान निर्देशन अवस्था को महत्व देते हैं। विद्यार्थी जिन विषयों का अध्ययन करता है उसी से संबंधित व्यवसायों का चयन करता है। यद्यपि कि व्यवसायिक निर्देशन के अन्य स्रोत भी हैं, लेकिन इसकी शुरुआत शैक्षणिक निर्देशन से होती है। व्यवसायिक निर्देशन में यह देखा जाता है कि वे कौन कौन से व्यवसाय हैं जिनसे सफल होने के लिए आवश्यक गुण व्यक्ति में मौजूद हैं। इस प्रकार व्यक्ति के गुणों या व्यवसाय की आवश्यकताओं की तुलनात्मक समीक्षा की जाती है। व्यवसायिक निर्देशन में यह बताया जाता है कि कोई व्यक्ति किन विषयों व्यवसायों के लिए आवश्यक योग्यता रखता है और उसमें सफल हो सकता है। सामान्य तौर पर बच्चे स्कूल जाते हैं तो बड़े होकर नौकरी या व्यवसाय में लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। जीवन में आने वाली कठिनाइयों के कारण उनमें कुंठा उत्पन्न हो जाती है और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य की भांति है। कुछ लोग अपना जीवन दीवार स्वपन में ही व्यतीत करते हैं। कुछ कम गंभीर किस्म के मानसिक रोगी कभी कभी इस तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं, जैसे इन व्यक्तियों ने बिना काम किए हुए थकान की शिकायत रहती है। बिना आर्थिक कारणों के चोरी करना भी मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। अन्य प्रकार के मानसिक रोग भी होते हैं जिनके कारणों का निदान करके उन्हें पुनः स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाया जाता है। मानसिक रोगियों के अध्ययन की शुरुआत तथा मानसिक अवस्था के कारणों की जानकारी के लिए इसके पिछले जीवन का इतिहास ज्ञात किया जाता है तथा बहुत से मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं। नैदानिक साक्षात्कार को भी कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक माना जाता है। उचित कारणों का पता लग जाने के पश्चात उनका उपचार करना आसान हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से इस क्षेत्र में सक्रिय मनोवैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि हुई। 1960 के दशक में नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत एक नई शाखा समुदाय मनोविज्ञान के रूप में विकसित हुई। परामर्श मनोविज्ञान के अंतर्गत हल्के किस्म के संवेगात्मक समस्याओं का निदान और उपचार किया जाता है। इसके अंतर्गत सामान्य लोगों की उनकी समस्याओं के समाधान में मदद की जाती है। ज़्यादातर नैदानिक एवं परामर्श मनोवैज्ञानिकों के कार्य में समानता दिखाई पड़ती है, लेकिन इनके क्षेत्र अलग अलग हैं। वास्तव में परामर्श मनोविज्ञान की शुरुआत व्यावसायिक निर्देशन आंदोलन से मानी जाती है। व्यावसायिक निर्देशन आंदोलन को जिस बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया है उसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सबसे बड़ा योगदान है। चौथा, अपराध और बाल अपराध। कानून और अपराध के क्षेत्रों में भी मनोवैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। जब कोई व्यक्ति गवाह के रूप में न्यायालय में आता है तो स्मरण में ह्रास अथवा प्रत्यक्षीकरण में त्रुटि होने के कारण सही गवाही नहीं दे पाता। अपराध जो कि सत्य बात को छुपाना चाहता है उसकी जांच मनोवैज्ञानिक विधि से होनी चाहिए। सामान्य धारणा यह है कि झूठ को पकड़ने के लिए मनोवैज्ञानिकों में एक यंत्र है जिसे लाई डिटेक्टर कहा जाता है। वास्तव में इस प्रकार का कोई यंत्र मनोविज्ञान के विकसित नहीं किया गया। हाँ, पॉलीग्राफ के माध्यम से कुछ जानकारी मिलती है जिससे अपराध के कारणों का पता लगाने में सहायता मिलती है। पॉलीग्राफ में रेखीय चित्र द्वारा व्यक्ति के सांस लेने की गति, रक्तचाप और त्वचाव की वैधित प्रतिरोधात्मकता की जानकारी मिलती है। यह सब जानकारी अपराधी से पूछताछ करते समय प्राप्त की जाती है। इस प्रकार मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह पता लगाना है कि जिसे अपराध के लिए पकड़ा गया है क्या वास्तव में वह अपराधी है अथवा नहीं। इसके बाद दूसरा क्षेत्र जिसमें मनोविज्ञान का मदद कर सकता है वह है अपराध निवारण। अपराध के कारणों में मानसिक अस्वस्थता, व्यक्तित्व संबंधी दोष अथवा नशाखोरी का प्रमुख स्थान है। इस प्रकार बाल अपराधियों के संबंध में भी मनोवैज्ञानिकों की मदद ली जाती है। बाल अपराध के कारणों का पता लगाने तथा उनको पुनर्स्थापन करने में मनोविज्ञान से सहयोग लिया जाता है।